ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच गई हैं। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री ने कल संसद के दोनों सदनों में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन का अवलोकन दिया गया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% तक ले आई है। देश में बेरोजगारी दर में हाल के वर्षों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। कल लोकसभा में लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 4.2% थी। ये दर 2021-22 में 4.1% और 2022-23 के दौरान 3.2% रही। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली से इस वर्ष की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में भौतिकी के प्रश्न के 2 सही उत्तर संबंधी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के फैसले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेषज्ञ टीम को आज दोपहर 12 बजे तक शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में अनियमितता के आरोप से जुड़ी याचिकाओं में भौतिकी के विवादास्पद प्रश्न के लिए ग्रेस अंक देने पर सवाल उठाया गया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हाल ही में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाया है। सुश्री हसीना ने राजधानी ढाका में उद्योगपतियों से कहा है कि स्थिति में सुधार होने पर कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों और संपत्तियों की रक्षा के लिए उन्हें कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री का यह बयान आरक्षण कम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद आया है। देश में हिंसा के दौरान 147 लोग मारे गए। गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के कई भागों में कल तक बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। शेष हिस्सों में बृहस्पतिवार तक बहुत तेज वर्षा होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज अधिक उमस होने और तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। इस कारण पहाड़ों में अधिक भूस्खलन हो रहा है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज वर्षा के कारण देहरादून जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस बीच भूस्खलन के कारण अवरूद्ध उत्तरकाशी में बिशनपुर के निकट गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को कल रात वाहनों की आवाजाही के लिए फिर खोल दिया गया है। इस वर्ष अब तक रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। ये पिछले वर्ष तीर्थयात्रियों की कुल संख्या से अधिक है, जबकि यात्रा संपन्न होने में अभी लगभग 1 महीना बाकी है। कल 11,700 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए और कुल संख्या 4,07,734 हो गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को उत्कृष्ट सेवा के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। युवा कार्य खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अभिनव बिंद्रा को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना नेपाल से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में अब तक अविजित भारतीय टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।